गंभीर शिक्षार्थियों, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एक पाठ हम चर्चा करने जा रहे हैं। अनपढ़ बनाए रखने की साजिश एक निबंध है हरिशंकर परसाई का। तो गद्य विधाओं में निबंध का बड़ा विशिष्ट स्थान है और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों की स्थापना करना। और आप देखेंगे कि जीवन के अनेक क्षेत्र होते हैं और उसके उपक्षेत्र भी होते हैं, जैसे कार्यालय में लेखा विभाग होता है, इसी प्रकार पत्रकारिता में समाचार, विज्ञापन, फीचर, संपादकीय आदि बहुत से हिस्से होते हैं। इन अलग अलग हिस्सों में विभिन्न समस्याओं पर विचार किया जाता है, लेकिन यहाँ जो रचनाकार हैं वे एक महत्वपूर्ण जो पक्ष है हमारा संपादकीय, संपादकीय के अंतर्गत अखबार में आप देखते होंगे कि जो बीच का पृष्ठ होता है उस बीच के पृष्ठ पर जो एक संदेश दिया जाता है, अखबार का संदेश, अखबार की मुख्य धारणा, उसे प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है, उसे संपादकीय कहते हैं। और सामान्य तौर पर लोग उसे पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसी तरह से अगर आप पत्रिकाओं को देखें तो पत्रिकाओं में जो शुरू का पृष्ठ होता है वह संपादकीय का होता है। आपने सुना होगा एक प्रमुख साहित्यकार राजेंद्र यादव का नाम, वे हंस पत्रिका के संपादक थे और उसमें वे एक संपादकीय लिखते थे कांटे की बात, और उसी संपादकीय के एक हिस्से को आपके इस पाठ्यक्रम में दिया गया है। यह जो पाठ है अनपढ़ बनाए रखने की साजिश, यह 1986 में लिखा गया और इसका मुख्य लक्ष्य था कि शिक्षा की ओर से सरकार की जो अनमनस्कता है उसके प्रति जो एक उपेक्षा का भाव है उसे रेखांकित करना। इसीलिए राजेंद्र यादव ने इसमें अखबार के बीच के हिस्से में जो सामग्री दी जाती है उस पर टिप्पणी की है कि उसमें जो विचार दिए जा रहे हैं वह वास्तव में हमारी जो जनता है उसके पक्ष में नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि संपादकीय में जो अखबार है या पत्र पत्रिका है उसके दृष्टिकोण का पता लगता है और विभिन्न समस्याओं और घटनाओं का उल्लेख किया जाता है, तो एक पत्रकार की ये चिंता होती है कि जो समस्याएं उठाई जा रही हैं क्या वे समस्याएं जनता के लिए कल्याणकारी हैं या नहीं। यहाँ भी राजेंद्र यादव जी ने शिक्षा और साक्षरता जैसे विषय पर अपनी टिप्पणी की है और उन्होंने चुटीली और व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है, क्योंकि हमारे देश में मनोरंजन, ऐशो आराम तथा कंप्यूटर जैसे बड़े बड़े उपकरण पर तो बेतहाशा खर्च किया जा रहा है, लेकिन ज्ञान प्रसार की जो बुनियादी चीज किताब है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए जो रचनाकार हैं वे आहत होते हैं, उन्हें लगता है कि शायद हम भौतिकता के जाल में ज़्यादा फंस गए हैं, हमने शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को छोड़ दिया है। उन्होंने इसे सामंतों, पूंजीपतियों, नेताओं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की साजिश भी बताया है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि यहाँ की जनता ज़्यादा शिक्षित हो, समझदार हो, ताकि उनका जो अपना व्यापार है वह बिना बाधा के, बिना किसी आलोचना के चलता रहे। अब इस संपादकीय का अगर हम शिक्षार्थियों विश्लेषण करते हैं तो हम देखेंगे कि संपादकीय के कुछ विशिष्ट तत्व होते हैं, जैसे विषय वस्तु, समसामयिकता, विवेचनात्मकता, दृष्टिकोण की स्पष्टता, भाषा शैली और उद्देश्य। तो हम इन तत्वों की कसौटी पर इस संपादकीय को कसने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से राजेंद्र यादव ने इस संपादकीय में इन तत्वों का बेहतर संयोजन किया है। सबसे पहले हम देखते हैं विषय वस्तु को। यह संपादकीय का मूल तत्व है। जैसे आप जानते हैं कि कहानी, उपन्यास, नाटक इत्यादि में जो कथानक होता है वही संपादकीय में विषय वस्तु बन जाता है। चूंकि संपादकीय संक्षिप्त विधा है अतः इसकी विषय वस्तु में बहुत विस्तार नहीं होता, व्यापकता नहीं होती, बल्कि एक ही विषय को उठाया जाता है और अलग अलग तर्क दिए जाते हैं और उदाहरणों की सहायता से उसका विवेचन किया जाता है और अंत में जो संपादक है वह एक निष्कर्ष देता है। उससे आप सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं और वह पाठकों को राय देने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता है। अनपढ़ बनाए रखने की साजिश मुख्य रूप से भारत के आम लोगों को साक्षर बनाने में जो आ रही बाधाएं हैं उसका विवेचन करता है। शिक्षार्थियों, यह संपादकीय जैसा मैंने बताया 1986 में लिखा गया था, उस समय आम बजट आया था और उसमें नए नए जो प्रावधान किए गए थे उसके अंतर्गत कागज के दाम बढ़ा दिए गए, लेकिन दूसरी ओर जो पूंजीपति और अमीर लोग थे उन लोगों के लिए जो इस्तेमाल की जाने वाली ऐशो आराम की चीज़ें थी उसके आयात में छूट दे दी गई। इस दृष्टि से यह संपादकीय आज भी बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर और जो मनोरंजन की चीज़ें हैं, विलासिता की चीज़ें हैं, उन पे बहुत तरीके के छूट दिए जाते हैं, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे यहाँ पे उन्होंने पुस्तक की बात की है, कागज़ों की बात की है, उस पर जो टैक्स है सब कुछ बढ़ा दिया जाता है। लेखक ने इस सच्चाई को भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया कि एक ओर तो आम जनता को पढ़ाने लिखाने के लिए सरकार को आवश्यक धन जुटाने में कठिनाई हो रही है, लेकिन दूसरी ओर विदेशों से महंगे उपकरण मंगाए जा रहे हैं। तो इस संपादकीय में विरोधाभास को चित्रित किया गया है, उसको उभारा गया है और अंधविश्वास जैसे अनेक पहलुओं पर चर्चा करते हुए यह बताने की कोशिश की गई है कि सभा में बैठे लोगों और पूंजीपतियों, उद्योगपतियों की मिली भगत से ऐसी साजिश चल रही है ताकि आम जनता शिक्षित न हो सके। यदि शिक्षित हो भी जाए तो वह उपभोक्तावाद और हल्के जो मनोरंजन है उसके जाल में जनता फंसी रहे और उनमें जागृति और चेतना न आ पाए। तो इस तरह का एक दृष्टिकोण यहाँ रचनाकार प्रस्तुत करते हैं। इस विषय को संपादक क्रमिक रूप से आगे भी बढ़ाते हुए निष्कर्ष तक ले जाते हैं और इनका जो निष्कर्ष है, इनका तर्क है, वह पाठकों को बहुत प्रभावित करता है और एक महत्वपूर्ण संदेश हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करता है। हालांकि संपादकीय में इतिहास, साहित्य, राजनीति, अर्थव्यवस्था, मनोविज्ञान जैसे कई विषयों को उठाया गया है, लेकिन ये सभी मूल विषय हावी नहीं हुए हैं, बल्कि शिक्षा और साक्षरता का जो मुद्दा है वही प्रभावी रूप से सामने आया है। इसके दूसरे तत्व को हम देखते हैं, वह है समसामयिकता। जैसा कि मैंने बताया कि अखबारों में या पत्रिकाओं में जो संपादकीय लिखा जाता है वह समसामयिक घटनाओं पर आधारित होता है। इसका मतलब है कि संपादकीय का विषय कोई ऐसी घटना होती है जो हाल में घटी हो या घटने वाली हो, आमतौर पर उसी घटना को विषय बनाया जाता है और जिसका संबंध अधिक से अधिक लोगों से होता है। जो विषय जितने लोगों को अधिक प्रभावित करेंगे वे उतने ही महत्वपूर्ण होंगे। परंतु कभी कभी आप देखेंगे कि पत्र या पत्रिका के अपने स्वरूप के कारण जो आम लोगों के महत्वपूर्ण विषय हैं वे समाचार का अंग नहीं बन पाते, लेकिन उस पर संपादकीय टिप्पणियां विस्तार से लिखी जाती हैं। जैसे अगर गणित के क्षेत्र में मान लीजिए कोई खोज हुई हो, विज्ञान के क्षेत्र में हुई हो, तो विज्ञान पत्रिकाओं के लिए वह संपादकीय का विषय बन जाता है। लेकिन सामान्य तौर पर आप देखेंगे कि जो समसामयिक घटनाएं हो रही हैं जिससे देश प्रभावित हुआ है उसे मुख्य रूप से संपादकीय का विषय बनाया जाता है। अगर इस आधार पर हम अनपढ़ बनाए रखने की साजिश संपादकीय पर बात करें तो हम देखेंगे कि जो 1986 के बजट में यह मुद्दा उठाया गया उसको आधार बनाकर, वह उस समय एक बड़ा मुद्दा था क्योंकि उससे देश की संस्कृति पर प्रहार हो रहा था और जो सही शिक्षा की दिशा थी वह कहीं न कहीं भटक गई थी। और इस दुखद स्थिति के वजह से रचनाकार ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से यह बताया कि जो विलासिता की चीजें हैं उस पर सरकार का ध्यान है, लेकिन जन सामान्य को शिक्षित बनाने का जो इतना बड़ा मुद्दा है वह कहीं न कहीं बजट से बाहर है। शिक्षार्थियों, भारत के लिए और विशेषकर हिंदी भाषी पाठकों के लिए यह विषय काफ़ी प्रासंगिक है क्योंकि हमारे यहाँ साक्षरता का प्रतिशत कम है। जिस समय यह संपादकीय लिखा गया था उस समय तो साक्षरता दर और भी कम थी, और लेखक ने जब ये देखा कि उपभोक्तावाद ज़्यादा हावी हो रहा है, अपनी जड़ें जो जमा चुका है, तो वे मूल विषय को सामने लाते हैं और उसे समसामयिकता की कसौटी पर कसते हैं। जो तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है वह है विवेचनात्मकता, अर्थात संपादकीय में विषय की स्पष्टता और सुबोधता के लिए यह जरूरी है कि उसमें सभी पहलुओं को शामिल किया जाए। घटना के पहले क्या स्थिति थी, उसके संभावित प्रभाव क्या होंगे तथा अन्य स्थानों पर इस तरह की घटनाओं की क्या प्रतिक्रिया हो रही है, इन सारी बातों की विवेचना करना संपादक का दायित्व तो होता है। संपादकीय में अपनी राय व्यक्त करते हुए भी विषय या समस्या के सभी पहलुओं को पाठकों के सामने लाना जरूरी है। अगर इस संपादकीय को देखें तो इसमें विषय की बहुत गहराई है और विस्तार से विवेचन भी किया गया है। बजट में कागज की कीमत में जो बढ़ोतरी हुई वह सामान्य लोगों में जो शिक्षा है उससे दूर करने की साजिष की जा रही थी, षड्यंत्र किया जा रहा था और उसके जो भयानक परिणाम होने थे उनको भी रचनाकार दिखाते चलते हैं। और उनकी दृष्टि बहुत ही पैनी है, उन्होंने सूक्ष्म विवेचन करते हुए पूंजीवाद का विरोध किया है, आलोचना की है और तार्किक ढंग से विषय को प्रस्तुत किया है। यह साबित करने की कोशिश की गई है कि शिक्षा और साक्षरता ही विकास की पहली सीढ़ी है और सत्ता तथा अधिकार के जो लोग अभिलाषी हैं वे आम जनता को शक्ति से वंचित करना चाहते हैं, इसीलिए वे शिक्षा से दूर रख रहे हैं। अगले तत्व को देखते हैं हम, दृष्टिकोण की स्पष्टता। अब आप देखें कि संपादकीय में विषय के विवेचन, वर्णन और उसके जो विभिन्न पहलू हैं उनके समावेश के साथ साथ एक स्पष्ट राय व्यक्त की जाती है जो जनमानस का निर्माण करती है। यह राय आलोचना या सराहना जहां अधिक से अधिक पाठकों के हित को ध्यान में रखकर दी जाती है, वहीं उस पत्र विशेष की अपनी नीति को भी स्पष्ट करती है। इस प्रकार जो संपादकीय टिप्पणी पाठकों को समस्या और विषय विशेष के प्रति रास्ता दिखाती है, उसके साथ साथ समाचार पत्र के विचार को भी आप जान सकते हैं। यदि आप एक दिन में 4-5 अखबारों को देखें और उसके संपादकीय को पढ़ें तो आपको लगेगा कि हर अखबार के विचार अलग अलग हैं। इस संपादकीय में भी इस तत्व को स्पष्ट रूप से उभारा गया है। यहाँ बिना किसी लाग लपेट के एकदम स्पष्ट रूप से अपनी राय प्रकट की गई है कि किस तरह देश की जनता का शोषण करने वालों ने जनता को जागृति, सूझबूझ और चेतना ला सकने वाले पुस्तकों से वंचित करने का षड्यंत्र रचा है। आप देखें कि जैसा मैंने पहले बताया कि हंस जो पत्रिका थी उसमें यह संपादकीय लिखा गया था, तो उसमें पूंजीपतियों की हर जगह आलोचना की जाती है और जनसाधारण का समर्थन किया जाता है और यही इस पत्रिका की मूल विचारधारा थी। हम अगले तत्व को देखते हैं, वह है भाषा शैली। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी रचना की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी या विशेष कड़ी माना जाए तो भाषा शैली है, क्योंकि संपादकीय भी एक समाज से जुड़ी हुई विधा है, इसलिए इसकी भाषा में भी संक्षिप्तता होती है, स्पष्टता होती है, क्योंकि भाषा का जो तेवर होता है उसी के अनुसार पाठकों की संख्या में वृद्धि होती है। आप देखेंगे कि जिस अखबार की भाषा बेहतर है उसे पढ़ने की रुचि हम लोगों में होती है। शैली को देखें तो उसमें भी गंभीरता का गुण होना चाहिए, उसमें विवेचना है, उस विवेचना में भी तर्क होना चाहिए, साथ ही व्यंग्य का पुट होना चाहिए उसमें, और भाषा में सुबोधता और चुटीलापन भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है संपादकीय की। इस अगर संपादकीय को देखें तो इसमें व्यंग्य का जोरदार ढंग से प्रयोग किया गया है, इसमें आवश्यकता और एक अवसर के अनुकूल उर्दू तथा अंग्रेजी भाषाओं का भी खुलकर प्रयोग देखेंगे आप। संपादकीय का जो अंतिम वाक्य है वह चमत्कार से भरा और प्रभावपूर्ण है, वह है कि या खुदा ये प्रायोजित ना खुदा हमें कहाँ ले जा रहे हैं। अब इस तरह की भाषा आप देखें कि कितनी दूर तक मार करती है। यहाँ कई तरह के नए शब्दों का भी सृजन किया गया है, जैसे सैडिस्टपन, और यहाँ व्यंग्य देखिए भाषा में कि अपने ऋषि मुनि मूर्ख नहीं थे जिन्होंने कुछ लोगों की जिंदगी से शिक्षा यानी किताब को एकदम बाहर निकालकर उन्हें सेवा धर्म सिखाया था। इस तरह का व्यंग्य आप इसमें हर जगह पर देखेंगे, और यह सिद्ध करता है कि भाषा की दृष्टि से भी यह संपादकीय बहुत ही श्रेष्ठ है। उसके बाद हम उद्देश्य के बारे में देखते हैं। इस संपादकीय का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि उस समय जो बजट में शिक्षा को महत्व नहीं दिया गया उसे रेखांकित करना चाहता है रचनाकार, और नए नए उपकरणों और विलासिता की चीज़ों पर छूट देकर सरकार ने वास्तव में जनता का अहित किया। इसीलिए यहाँ पर संपादक कहते हैं कि यह वास्तव में हमें उल्टी दिशा की ओर ले जाने वाला कदम है, और आज भी अगर हम यह कहें कि सरकार को शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए और सरकार हमेशा उस पर तत्पर भी है, तो उस तरह से यह संदेश आज भी प्रासंगिक है। अगर शीर्षक की सार्थकता देखें तो इसमें जो शीर्षक है वह बहुत ही सहज है, इसमें पांडित्य प्रदर्शन नहीं दिखाई देगा आपको। थोड़े से शब्दों में चुटीले तरीके से अपनी बात को रचनाकार ने रखा है। अनपढ़ बनाए रखने की साजिश यह शीर्षक इसलिए सार्थक है क्योंकि इन पांच शब्दों में अत्यंत तीखापन है, इसमें एक सामूहिक कार्यवाही को साजिश कहा गया है, और लेखक ने सुनियोजित ढंग से चल रहे षड्यंत्र की ओर सभी लोगों को आगाह किया है। इसमें शब्द बहुत सरल और सुबोध हैं, अर्थपूर्ण हैं, और वह अनायास हमारा ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। तो इस तरह से शिक्षार्थियों यह जो पाठ है वह वास्तव में समस्या आधारित है, और इसमें संपादकीय विधा के माध्यम से राजेंद्र यादव जी ने आम लोगों की जो समस्या है शिक्षा की उसको हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है।